والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. محترم مولانا محمد سلطان صاحب مرکزی نادم تربیت جماعت اسلامی پاکستان اور میرے قابل احترام بھائیوں دوستوں اور عزیزوں اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر حال میں ہر صاحب ایمان کے لیے حفظ جان کی حیثیت رکھتا ہے. بلکہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی کا گمان یہ ہو کہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کے حوالے سے اپنی نسبت کو بیان کرنا ہی انسان کے لیے باعث سعادت ہے اور ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انسانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے اور رہتی دنیا تک ان کی ان رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا. پھر جس جس عنوان اور جس جس زاویے سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, آپ کی جدوجہد کو اور شب و روز کو قریب سے دیکھا جائے, اتنا ہی تاثر گہرا ہونے لگتا ہے اور فاصلے سمٹ کر قربت کے اندر تبدیل ہونے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کوہ صفا پر کھڑے ہیں, یا سباہا کہہ کر لوگوں کو پکار رہے ہیں, بالفاظ دیگر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. مشرکین مکہ اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر بیتابی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس لیے یہاں پر جمع کیا اور کس لیے کیوں کر ہمیں اکٹھا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے, اسے سچ جانو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہاں. اول تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور اس جانب آپ ہی دیکھ سکتے ہیں, ہماری نظر تو ادھر نہیں جا رہی, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صادق ہیں, امین ہیں, سچے اور پاک باز ہیں, راست گو ہیں. جو زندگی آپ کی ہم نے اپنے درمیان گزرتی اور بسر ہوتے دیکھی ہے وہ سچائی اور پاک بازی کی زندگی ہے. بتائیے کس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں ہم کو جمع اور اکٹھا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں, شیطان تمہاری گھات میں ہے, عنقریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے, بس ایک خدا کی بندگی اختیار کرو, سارے بتوں سے رشتہ اور ناتا چھوڑ دو اور بت پرستی سے اور شرک سے باز آ جاؤ, اس ایک خدا ہی کو جو پالنہار ہے اسی کے دامن کو تھام لو. سناٹا چھا گیا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاموشی ہی دیکھنے کو ملی اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لوگ گویا ہوئے, بانداز سرگوشی ایک دوسرے سے کہتے دکھائی دیے کہ اچھا, یہ بات کہنے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا, یوں ہمارا وقت ضائع کیا. اور پھر لوگ الٹے پیروں واپس لوٹتے ہیں, طنز اور تمسخر کرتے ہوئے, باتیں چھانٹتے ہوئے, برا بھلا کہتے ہوئے. اور پھر وہ لمحہ طلوع ہوا کہ آپ کوہ صفا پر اکیلے یکا اور تنہا کھڑے تھے और सारे लोग छोड़कर आपको वापस चले गए थे। जरा सोचिए कि क्या वाकया है कि वो लोग के जो चंद लम्हे पहले आपकी सदाकत और अमानत के गुण गा रहे थे, आपको दयानत का पैकर बता रहे थे और आपके हर लफ्ज को मानने और कबूल करने के लिए आमादा और तैयार नजर आ रहे थे, जब कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई उनके सामने वाशिगाफ हुई, जब कायनात की सबसे बड़ी हकीकत उन पर खोलकर बयान की गई, तो वही लोग मुनकर हो गए, मुजस्सम एहतजाज बन गए, सब मिलकर वहां से रुखसत हुए और अकेला और तन्हा आपको छोड़ गए। कितने बुरे थे ये मक्के के मुशरिकीन और कुफारे मक्का कि यूं इस तरीके से सब कुछ कहने के बाद भी एक दूसरे रवैये का शिकार हुए। लेकिन मेरे दोस्तों, वो तो ईमान नहीं रखते थे, हम जो ईमान रखते हैं, हमारा रवैया क्या इससे कुछ मुख्तलिफ है? हमने भी तो आका को अकेला छोड़ा हुआ है, हम भी तो कहते हैं कि सादिक और अमीन और कलमा भी उन्हीं के नाम का पढ़ते हैं, लेकिन फिर कितनी सुन्नतें हैं कि जिन्हें अपनाते हैं, किस कदर उनकी शरीयत को लेकर घर घर और दर दर पर दस्तक देते हैं, किस तरह उस आफाकी पैगाम को कि जिसके लिए उन्होंने ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान अल तशका, अल्लाह तबारक व तआला की ये गवाही भी जिसके लिए मौजूद है, कितने हैं कि जो उस आफाकी पैगाम को लेकर उठते हों और दर दर और घर घर पहुँचते हों। तो सच्ची बात यह है कि सीरत का मुताला तो नाम ही इसका है कि खुद अपने अंदर झांक कर देखा जाए, खुद अपने रवैयों को परखा जाए, खुद अपने शब और रोज़ का जायजा लिया जाए, खुद अपने तौर और अतवार को और अपने रख रखाव और तरीकों और सलीकों और करीनों को इस कसौटी के ऊपर देखा और परखा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए, जो कुछ हमें बता कर गए, जो तालीम हमको देकर गए, जिंदगी की जो तरजीहात हमारे लिए मुकर्रर कर गए, और जिंदगी जिस डगर पर गुजरनी चाहिए, जिन सांचों में ढलनी चाहिए, जिन उमूर के हवाले से उसकी पहचान और शनाख्त कायम होनी चाहिए, क्या वाकई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका मिज़दाग बनने के लिए और उसका खूगर बनते हुए उसके मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए हम वाकई शब और रोज़ कोशा हैं? सीरत का मुताला इसके अलावा किसी और चीज़ का नाम नहीं है कि आदमी अपने अंदर डूब कर अपने आप को पाने की कोशिश करे, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी का मिज़दाग बनने की कोशिश करे। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लम्हा कि जब आपने लोगों को पुकारा था और उसके बाद के जो लम्हात हैं, फिर आपने पैरों को गुब्बारा आलूद किया, फिर आपने हर दर पर दस्तक दी, फिर आप हर शख्स से मिले और उसके सीने पर दस्तक देते हुए उसके दिल की दुनिया को बसाने की कोशिश करते रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला खुद पुकार उठा कि लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, कि तुम तो अपने आप को हलाक किए डाल रहे हो, महज इस गम में अपने आप को भुला रहे हो कि लोग ईमान नहीं लाते, तुम्हारी बात को तस्लीम नहीं करते, तुम्हारी बात पर लब्बैक नहीं कहते, महज ये बात तुमको भुलाई दे रही है। और वो जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दावत अल्लाह के इस काम में और अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के इस काम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इस्तग़राक का मुजाहरा किया, किस तरह महव होकर इन्हमाक का मुजाहरा किया, उसकी गवाही भी खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कि तुम अपने आप को मशक्क़त के अंदर डाल रहे हो। ये तो एक जिक्र है, याद दहानी है, हमने इस कुरान पाक को इसलिए तो नहीं नादिल किया था। यानी जिसने इस मनसब पर मामूर किया, जिसने ये जिम्मेदारी सुपुर्द की, जिसने आपको अपना नबी बनाकर भेजा, वो खुद आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट पर तबसरा फरमा रहा है और वो खुद आप जिस तरह अपने आप को हलकान किए दे रहे हैं, उन हवालों से आपकी कैफियत को दूसरों तक पहुंचा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब हम आका की सुन्नत की पैरवी की बात करते हैं और आप ही के हवाले से जीने और मरने का अज़्म करते हैं और पुकार पुकार कर कहते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमारा सब कुछ उसी के लिए है, जीना और मरना भी, नमाज और कुर्बानी भी, तो वाकई फिर ये बात तो देखने की है कि हम भी तो उसी दावत के अलमबरदार की हैसियत से उठे हैं और माशरे में चाहते हैं कि इसी दावत का दौर दौरा हो, यही दावत हर दर में दाखिल हो, हर घर के अंदर पहुंचे, हर दिल के अंदर जगह बनाए। ये दावत तमक्कुन और इख्तियार और गलबा भी हासिल करे, ये दावत अल्लाह इनकलाब का मौजू भी करार पाए, तो क्या वाकई उसके लिए हम अपने आप को इस कदर थकाते हैं? इस तरह शब और रोज़ के मामूलात और ज़िंदगी के तमाम झमेलों में उसको सबसे पहले और तरजीह अव्वल आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला होगा तो ये दिलों को कचोके देने के लिए होना चाहिए। ये दिल की वीरान दुनिया को बसाने और कांटों को निकाल कर फूल और कलियों से उसको बसाने का जहाँ पर एहतमाम होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हरम काबा के एक कोने में तशरीफ़ फरमा है। हरम के दूसरे कोने में सरदारान कुरैश बैठे हैं, सर जोड़ कर बैठे हैं और एक दूसरे से ये कहते बैठे हैं कि इस शख्स ने हमको बहुत तंग किया है। वो जो हरम के दूसरे कोने में बैठे हैं उनका तस्करा है कि मक्के के इस माहौल में बड़ा पुरअमन माहौल था, हालात की बेहतरी चारों तरफ मौजूद थी, लेकिन इन्होंने इस मक्के के माहौल में इर्तियाश पैदा किया है। हर घर के अंदर एक तूफान उठा हुआ है, कोई दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका है, कोई अभी कुफर के ऊपर इसरार कर रहा है, हर जगह ये कशपकश मौजूद है। मक्के का अमन तहोबाला हुआ है, कैसे इनसे ये बात बताई जाए, कैसे हालात को बेहतरी की तरफ दोबारा लाया जाए, ये मौजू गुफ्तगु एजेंडे का ये नुकता सरदारान कुरैश सर जोड़ कर बैठे इस पर बात कर रहे हैं। उतबा बिन रबी उठकर खड़ा होता है और कहता है कि सरदारान कुरैश, अगर तुम मुझे अपना सरदार मानो और मेरी बात पर यकीन करो और मुझे अपना नुमाइंदा मान लो तो मैं तुम्हारी तरफ से उनके पास जाता हूँ, वो जो हरम के दूसरे कोने में बैठे हैं, कुछ नामा प्यामा करता हूँ, तुम्हारी बात उन तक पहुँचाता और फिर वो अगर कुछ कहते तो उनकी बात तुम तक पहुँचाता हूँ, कोई मिलजुल कर रहने की बात उनके दरमियान फैलाता और कहता हूँ, और कोई ऐसा मायदा अगर हमारे दरमियान हो जाए कि हम वाकई मक्के में पुरअमन तरीके से दोबारा रह सकें तो इस बात को उनके पास छेड़ता हूँ। सब ने बिलइत्तफाक कहा कि हाँ उतबा, हमने तुम्हें अपना सरदार माना, तुम जाओ हमारी तरफ से इन मुज़ाकरात का आगाज़ करो और हमारा पैगाम उन तक पहुँचा कर देखो कि वो क्या कहते हैं, उस रद्द अमल को हम तक पहुँचाओ। उतबा बिन रबी उठता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता है। आप सर झुकाए बैठे थे, उसको आता देखते हैं, सर उठाकर उसकी तरफ देखते और फरमाते हैं कि उतबा किस लिए आए हो? बैठने के लिए उसको कहते हैं। उतबा बिन रबी बैठ जाता है और फिर कहता है कि भतीजे, तुमने पूरी कौम को बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। तुम हमारे बुतों को बुरा कहते हो, आबा अजदाद के दीन को गलत कहते हो, हमारी सारी रवायात रसूम और रवाज को गलत कहते हो, हमारे सारे तौर तरीके उन सब को तुम मुस्तरद करते हो, आखिर बताओ कि चाहते क्या हो? अगर दौलत चाहते हो तो इस कदर दौलत तुम्हारे गिर्द ढेर लगाएंगे कि तुम उस दौलत के अंदर छुप कर रह जाओगे। अगर इज्जत और शोहरत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार हकम बनाए लेते हैं, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला भी मक्के की इज्तिमाई ज़िंदगी में नहीं करने के हैं। अगर औरत चाहते हो तो मक्के की जिस औरत की तरफ इशारा करो तुम्हारी खिदमत में लाकर पेश कर देते हैं, और अगर तुम किसी मर्ज में किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो तो हमें बताओ, हम बेहतर से बेहतर तुम्हारा इलाज करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इन खराफात को खामोशी के साथ सुनते रहे और फिर पूछा कि अबुल वलीद, तुमने अपनी बात पूरी कर ली? उसने कहा कि हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, आप फिर मेरा जवाब सुनो। सूरह हामीम सजदा की तलावत करनी आपने शुरू की, आयत सजदा आई तो आपने सजदा किया, उठकर बैठे और पूछा कि तुमने मेरा जवाब सुना? उसने कहा कि हाँ, सुन लिया। उसके बाद उतबा बिन रबी वापस लौटता है, सरदारान कुरैश उसको अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो बानदाद सरगोशी एक दूसरे के कान में कहते हैं कि अरे, ये तो वो शख्स है ही नहीं जो थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था, इसका तो रंग बदला हुआ है, रंग फक पड़ा हुआ है, ये पीला पीला उतबा बिन रबी, हमने तो बड़ा कवि और मजबूत और आसाब के लिहाज से तनोमंद और तंदुरुस्त इंसान यहाँ से भेजा था, इसकी तो टांगें लड़खड़ा रही हैं, कौन सा उतबा बिन रबी यहाँ से वहाँ गया था, एक मजबूत और कवि हिकल गया था, कौन सा उतबा बिन रबी वापस आता है, एक ढीला ढाला और कमज़ोर सा इंसान। कि उतबा बिन रबी वापस पहुँच जाता है और पुकार कर कहता है कि सरदारान कुरैश, अगर तुम मेरी बात मानो तो इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो, एक अजीबोगरीब कलाम मैंने सुना है, कोई इनकलाब बरपा होने वाला है, कोई तब्दीली माशरे में आने वाली है, कोई हालात के अंदर उनका रुख हवाओं का बदलने वाला है। अगर तुम इसको इसके हाल पर छोड़ दो तो तुम्हारे कुछ किए बगैर अगर ये नाकाम हो जाता है तो तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, और अगर कामयाब होता है तो इसकी कामयाबी में तुम्हारी कामयाबी भी होगी। सरदारान कुरैश ने जब ये सुना तो उनकी आंखें सुर्ख हो गईं, वो तैश और गुस्से में आ गए। सब ने जलाल के आलम में कहा कि उतबा, तुम पर भी उसका जादू चल गया। हम न कहते थे कि ये शख्स जादूगर है, हम न कहते थे कि ये शख्स साहिर है, जो इसकी बात सुनता है वो इसी की हाँ में हाँ मिलाता और इसी की बात करने लगता है। उतबा बिन रबी ज़्यादा ज़ोर से और चिंघाड़ कर बोला और उसने कहा कि सरदारान कुरैश, हमने ये बाल धूप के अंदर सफ़ेद नहीं किए हैं, हमने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, खुदा की कसम ये जादूगर नहीं है। तुम कहते हो कि ये साहिर है, नहीं ये साहिर भी नहीं है। तुम कहते हो कि ये मजनू और काहिन है, नहीं ये मजनू और काहिन भी नहीं है। एक अजीबोगरीब कलाम मैंने सुना है, एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है, कोई तब्दीली अतराफ में माहौल के अंदर कोई तब्दीली मुंतजर है और तब्दीली आने वाली है। कौन सी तब्दीली? ले युज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले वलौ करहल मुशरिकून की तब्दीली। किसी को बुरा लगे या भला लगे, किसी की पेशानियों पर बल पड़े, किसी की पेशानियों पर तेवर आए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तब्दीली के ख्वाह थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरे माशरे के अंदर गलबे दीन के लिए कोशा थे। आप ज़रा देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं पेश किया गया। आपको दौलत भी पेश की गई, इज्जत और शोहरत भी पेश की गई, आपको औरत भी पेश की गई, सेहत भी पेश की गई, लेकिन आप मुसलसल इसी एक बात पर कायम थे कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीन अल्हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करहल मुशरिकून। कि ये पूरा दीन इसलिए भेजा गया, इस हिदायत पर आपको इसलिए सरफराज किया गया कि तमाम माशरों के अंदर जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं उन इंसानों को, बंदों को बंदों के रब की तरफ हकाया जाए, सारे झूठे खुदाओं और बुतों से उनका रिश्ता और नाता तोड़ा जाए, जितने मस्नूई उन्होंने मुजस्मे बना रखे हैं उन सब से उनको निजात दिलाई जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जो दौरे नबूवत है, महज कोई इत्तिफाकी हादसाती तौर पर कुछ वाकयात नहीं पेश आते हैं, हम बतौर वाकयात उनको बयान करते हैं, लेकिन वो तमाम वाकयात एक बड़े सिलसिले की कड़ियाँ हैं। वो तमाम वाकयात एक मंजिल की तरफ बढ़ते हुए निशानात मंजिल की हैसियत रखते हैं। ये पूरा एक ही सिलसिला, एक ही पैकेज, एक मरबूत सा मामला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलसल उसकी निशानदही कर रहे हैं, लोगों को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए सीरत का और तस्किए का मामला आप लोगों के साथ कर रहे हैं, इसी के लिए कलमा पढ़ाते, कुरान पाक सुनाते हैं, अपनी सोहबत से मुस्तफीज लोगों को करते, उनको मुजाहिद बनाते और मुसलसल इन्हीं राहों के ऊपर हकाते हैं। तमाम वाकयात इसी एक सिमत में रहनुमाई करते हैं। जो जो वाकयात जिस जिस नौयत के पेश आते हैं, वो जो वाकया बड़ा मशहूर हम कहते और सुनते और पढ़ते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह एक जगह से गुजरे कि जनाब अबू तालिब वहाँ कुछ कुरैश के लोगों के साथ बैठे हुए थे, आपको गुजरते देखा तो जनाब अबू तालिब ने आपको आवाज़ दे ली और कहा कि भतीजे, ये तुम्हारी कौम के कुछ लोग यहाँ पर जमा हैं और तुम्ही से कुछ कहना भी चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचा की बात सुनकर वहाँ पर आप पहुँच गए और मुतवज्जे हुए। सब लोगों ने बयक ज़बान फिर उसी दास्तान, उसी किस्से को छेड़ा और सब ने कहा कि लोगों, भतीजे, तुमने पूरी कौम को बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। हम शदीद किस्म के बहरान और मसाइल से कि जंगल से इस वक्त गुजर रहे हैं और हालात की खराबी है कि जो पैरों की बीड़ियाँ बनी हुई है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हालात के सुधार के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हफ्ते के चंद रोज़ तुम हमारे बुतों को पूज लिया करो, हफ्ते के बकिया रोज़ हम तुम्हारे खुदा की बंदगी कर लिया करें, कोई मिलजुल कर रहने का प्रोग्राम बनाओ, कोई नुक्ता इश्तराक और हालात की बेहतरी के लिए कोई फार्मूला तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर तवज्जो के साथ उनकी बात सुनी, लेकिन फिर उन्हें तो इस काबिल न समझा कि उनकी तरफ मुतवज्जे होते। अपने चचा की तरफ मुतवज्जे होकर आपने फरमाया कि चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख देंगे, तब भी मैं अपने मिशन से बाज ना आऊँगा। वो कौन सा मिशन है? वही जद्दोजहद, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही की जद्दोजहद, कि इस दीन को गालिब किया जाए, تمام ادیان کے مقابلے میں، تمام طریقہ زندگی کے مقابلے میں، زندگی گزارنے کے جو جو رویے لوگوں نے، جو جو فلسفے لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، تمام فلسفوں کے اوپر، تمام رویوں کے اوپر اسی دین کی چھاپ ہو، اسی کو غلبہ حاصل ہو، اس کے لیے جدوجہد اگر وہ ضروری ہے تو کی جائے، اس کے لیے کشمکش اگر وہ ضروری ہے تو مول لی جائے، اس کے لیے قربانی ہرگز اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اس کے لیے ایثار کا پیکر بننا، مجسم طور پر اس کا ایثار کا پیکر بنا جائے، اور جن جن حوالوں سے ان کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہو، اپنی مٹھی میں بند کیا جا سکتا ہو، اپنے رب کی طرف ہکایا جا سکتا ہو، ان تمام حوالوں سے اس پورے کام کو لے کر چلا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا مطالعہ بتاتا ہے، پورے حیات طیبہ کا مطالعہ جزیات کے اندر بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اسی ایک مشن کے حوالے سے پورے معاشرے کے اندر چل پھر کر اور اپنے رفقاء کار کو ان لوگوں کے پاس جو معاشرے میں رہتے اور بستے تھے بھیج کر اسی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جس جس عنوان آپ چاہیں تو اس پر غور فرمائیں، جس جس عنوان دیکھیں گے اسی بات کو صحیح سچا اور درست پائیں گے۔ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مکے کے اندر دعوت دیتے دیتے اس مقام کو پہنچے کہ دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ اہل مکہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، چلو طائف کا رخ کیا جائے، اور دل کے اندر جذبات اور خیالات یہ تھے کہ عین ممکن ہے کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، دل کے اندر جگہ دے دیں، دل و دماغ کی دنیا میں بسا لیں، اور پھر یہ دعوت متمکن ہو جائے، اس کو غلبہ حاصل ہو جائے، یہ دعوت ریاست بن جائے، یہ دعوت حکومت قرار پائے، یہ دعوت مقتدر ہو جائے، یہ دعوت ہر چہار طرف اسی کا پھریرا لہرائے۔ لہذا ان تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آپ نے طائف کا رخ کیا کہ اس دعوت کو واقعی معاشرے کے اندر غلبہ ممکن ہے کہ طائف کے لوگوں کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، واقعات میں آتا ہے، آپ نے بھی پڑھا اور سنا اور بیان کیا ہوگا جا بجا، کہ صبح سے شام ہوئی ہے، اول تو مکے سے طائف تک کا سفر جس کا کمی لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اس زمانے کے حالات کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ سفر طے ہوا ہوگا، لیکن طائف پہنچنے کے بعد صبح سے شام ہوتی ہے، ہر گھر پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر دل کی ویران دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے ملتے، ہر ایک سے بات کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی پیغام کو واہ کرتے اور قریب اور نزدیک اسی کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی نہیں کہ جو ماننے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو قبول کرنے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو لبیک کہنے والا ہو، کوئی نہیں کہ جو آپ کے لیے کسی نرم گوشے کا اظہار کرنے والا ہو، سبھی تندی سے پیش آتے ہیں، سبھی ترشی سے پیش آتے ہیں، سبھی تلخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سبھی دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے، گالیوں سے نوازتے ہیں، طنز و تمسخر کرتے ہیں، کہنے والے یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ نبی بنایا جاتا، تم ہی رہ گئے تھے کہ جس کو نبی بنانا تھا، اگر تم ہی اس کے نبی، ایسے لوگ نبی ہوں گے تو میں نہیں مانتا۔ یعنی انکار کے بھی کون کون سے طریقے نہ تھے کہ اہل طائف نے اختیار کیے ہوں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، یعنی دل زخمی تھا، ہر چہار طرف سے تیر و نشتر کی بارش ہوئی تھی، زخموں سے چور چور تھے، تھکے ماندے بھی تھے، اپنے ہی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، لمبا سفر بھی طے کر کر آئے تھے، مسافرت کی کیفیت بھی طاری تھی۔ ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بالآخر آپ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھ گئے، لیکن نہیں، اس سے پہلے اہل طائف نے اتنا ہی نہیں کیا کہ صرف انکار کیا ہو، بلکہ جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگایا، جو آپ پر پتھراؤ کرتے جاتے تھے، آپ راہ چلتے جاتے تھے، اور واقعات کے اندر آتا ہے کہ نالین مبارک میں اس قدر خون کھڑا ہو گیا کہ آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے، اس حال میں آپ درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں۔ یعنی کس کیفیت سے آپ دوچار ہیں، تصور خیال میں ذرا ماضی سے رشتوں کو جوڑیے، ذرا تاریخ سے اپنے آپ رشتوں کو استوار کیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر لاکھوں درود، کہ جن پر لاکھوں سلام، کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں بار قربان، وہ جو محسن آدم ہیں، وہ جو حتمی مرتبت ہیں، وہ جو محبوب ترین انسان ہیں، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، کس حال سے دوچار کیے جا رہے ہیں، کس جرم کی پاداش میں، لِيُظْهِرَهُ ہوں الدین کلے، کہ کسی طرح اس دین کو ظاہر اور باہر کریں، اسی کے غلبے کا اہتمام کریں، اسی کے لیے جد و جہد اور کشمکش کو عام کریں، اور انہی حوالوں سے سارے لوگوں کی پہچان اور شناخت کو عام کریں۔ آپ درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ उस फरिश्ते को लाया हूं कि जो ताइफ की इस बस्ती को नेस्त नाबूद कर दे, तबाह और बर्बाद कर दे, इसको खाक खून मिला दे। ये दो पहाड़ों के दरमियान जो बस्ती आबाद है, वो फरिश्ता साथ लाया हूं। आप कहें तो अल्लाह के हुक्म से इन दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए कि ये बस्ती रेजा रोजा हो जाए, ये तारीख में इबरत का निशान हो जाए। इसलिए कि आज अल्लाह तबारक ताला बहुत ही गजबनाक है कि उसने देखा है कि उसका महबूब तरीन बंदा किस तरह से सताया गया है, किस तरह से खाली हाथ लौटाया गया है, किस तरह से जख्मों और खून में नहलाया गया है, किस तरह गालियों से नवाजा गया है, किस किस उनवान सताने के जितने उनवान हो सकते हैं उन सब की बज़ाहिर कहकशां सजी हुई है, उन तमाम हालात से दोचार किया गया है। आज अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही गजबनाक है। आप इशारा कीजिए कि उसके हुक्म से इस बस्ती को बिल्कुल मिटा के रख दिया जाए। कैसी सुनहरी पेशकश है। जिन लोगों ने अभी जिस हाल से दोचार किया है उनसे इंतकाम लेने का कितना बेहतरीन मौका हाथ आया है, बिल्कुल नकद मौका सामने है। लेकिन नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठते हैं कि नहीं, ये नहीं तो इनके बाद वाले ईमान लाएंगे, ये नहीं तो इनकी आइंदा नस्लें ईमान लाएंगी। और फिर ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो आपकी ज़बान मुबारक से अदा होते हैं, फिर अपने रब से मुनाजात और हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं, सजदे के अंदर गिर जाते हैं और फिर पुकार पुकार कर अपने रबी से कहते हैं कि परवरदिगार, तूने मुझे किन लोगों के पास भेज दिया है जो मेरी बात को समझते नहीं हैं, इस पैगाम को कबूल करते नहीं हैं, जो हर हर उनवान मुस्तरद करते हैं, मुजस्सम एहतजाज बने नजर आते हैं, हर हर उनवान मुझे गालियों से नवाजते और बुरा भला कहते हैं, तूने किन लोगों के मुझे हवाले कर दिया है। बज़ाहिर गिले का अंदाज है, बज़ाहिर शिकवे का अंदाज है, लेकिन ये तो कारकर्दगी की रिपोर्ट है कि जिसने इस मनसब पर फाइज किया है उसी को कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और फिर इसी पर बस नहीं करते। फिर उसके बाद कह उठते हैं कि परवरदिगार, अगर तू इसी पर राजी, तेरी खुशी इसी के अंदर है तो मैं भी इस पर राजी हूं, मेरा रब राजी है तो फिर सारा जग राजी है, लोग मुझे गालियां दें तो मैं इस पर राजी हूं, लोग रास्ते में कांटे बिछाएं तो मैं इस पर राजी हूं, लोग मुसलसल मुझे सलावातें सुनाएं तो मैं इस पर राजी हूं, लोग खाली हाथ मुझे लौटाएं और हर हर उनवान मुझे सताएं तो मैं इस पर राजी हूं, इसलिए कि मेरे रब की रजा जिस चीज के अंदर है उसी के अंदर मेरी भी रजामंदी है। देखिए कैसी तालीम इसके अंदर मौजूद, दावत अल्लाह का काम करने वालों के लिए और इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब का नारा लगाने वालों के लिए और इस्लामी निजाम के लिए बड़ी बेताबी और बेकरारी का इजहार करने वालों के लिए और वो जिन्होंने ये समझा है कि जन्नतों का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और ठीक समझा है बिल्कुल, उन सब लोगों के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नकूश पा छोड़ कर जा रहे हैं, अपनी सुन्नत इस रास्ते में बता कर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी के तौर तरीके कि इन्हीं राहों से गुजर कर तुम उन मंजिलों को पहुँच सकते हो कि जो तुम्हें बड़ी अजीज हैं, अल्लाह की रजा की मंजिल, उसके दीदार की और उसकी जन्नतों की मंजिल, वहाँ तक अगर तुम्हें पहुँचना है तो इन्हीं रास्तों से आ सकते हो। कुर्ब इलाही का भी मामला इसमें पता चलता है कि ताल्लुक बिल्ला कहते किसे, अपने रब से बंदा हम कलामी का शर्फ हासिल करे, उससे मुनाजात करे, अपने दुखों को भी बयान करे, अपने जख्मों को भी खोल कर रख दे, अपने ऊपर टूटने वाले मसाइब उस सिलसिले को भी यहां से वहां तक दराज करे और फिर उसी से ये बात भी अर्ज करे कि परवरदिगार, ये सब कुछ अगर तेरी तरफ से है और तेरी रजा इसी के अंदर है तो मेरी रजा भी, राजी बरजा रहने का भी ऐलान करें, इसी के अंदर सब कुछ मुजमिर और पिन्हा। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं, यानी हम ये दावा करते हैं कि हम इस वक्त मुताला कर रहे हैं, हम इस वक्त यहां पर इसीलिए तो जमा हैं, बैठे हैं और इकट्ठे हैं, और ये मुताला इसलिए कर रहे हैं कि अपनी सीरत की तामीर चाहते हैं, हम अपने नफ्स का तस्किया चाहते हैं, हम अपने रब से रुजू करना चाहते हैं, हमारे जो फासले बंदे और रब के बढ़ गए हैं उनको घटाना चाहते हैं, उसी का होकर रहना चाहते हैं और आका के हवाले से ही अपनी पूरी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। इसी का नाम तरबियत, इसी का नाम तस्किया है, इसी का नाम ताल्लुक बिल्ला है। इसलिए अगर हम इस वक्त यहां पर इन्हीं उनवानात को सजाए और अपने दिल की दुनिया में इन्हीं धड़कनों को तेज करने के लिए यहां पर बैठे हैं तो फिर अपने रब से कुछ मुनाजात तो करें, कुछ हम कलामी का शर्फ तो हासिल करें। इसलिए कि अपने रब से तो हर वक्त बात हो सकती, हर हाल में बात हो सकती, जब बज़ाहिर मैं और आप बात कर रहे हो तब भी मैं भी अपने रब से और आप भी अपने रब से, रब तो सबका एक ही है, बजाहिर लग रहा होगा कि मैं आपसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए कि उसने तो कोई शर्त रखी नहीं है, दिल की दुनिया आबाद हो, दिल में उसका नाम नामी इसमें ग्रामी मौजूद हो, और उस हवाले से जो उसका खौफ हो सकता है, जो उससे उम्मीद हो सकती है, वो सारे पैमाने नसब हों लगे मौजूद हों, तो बंदा हर हाल में बज़बान हाल भी उसको पुकारता है, बज़बान काल भी उसको पुकारता है, बांदाज़ सरगोशी भी उसको पुकारता है, बावाज़ बुलंद भी उसको पुकारता है, हाँ के पुकारे उसी के हवाले से अपने आप को दुरुस्त करने, इस्लाह पज़ीर होने और सही रास्ते पर चलने की उसी से मुसलसल दुआ भी करता है। इसलिए इस खास लम्हे जब हम बज़ाहिर सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहे और उसके कुछ गोशों में पहुंचकर अपने लिए कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने रब से ये तो ज़रूर ही चाहा जाए कि हमें वाकई इसका मिज़दाक बना दे, इस काबिल तो हमको ज़रूर ही बना दे कि आका की शिफात हमको नसीब हो जाए और दस्ते मुस्तफ़ा से हौज़े मुस्तफ़ा पर जामे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, और उन तमाम हवालों से जब ये शिफात मुस्तफ़ा भी नसीब हो तो बंदे की सआदत और खुशबख्ती का क्या कहना है, ये सारी सआदत और खुशबख्ती नसीब हो जाए। मेरे दोस्तों, एक वाकया और सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। ये तो गोया मक्की दौर के अनगिनत वाकयात दूर तक फैले हुए, और मैंने अर्ज़ किया कि वाकयात महज वाकयात नहीं है, ये निशानात मंजिल है, ये मंजिल की तरफ बढ़ने और बढ़ते चले जाने का शऊर है कि जो लोगों में पैदा करते हैं। ये मुसलसल ये बताने की कोशिश है कि जिसे भी दावत का काम करना है, इनकलाब का काम करना है, जिंदगियों को तब्दील करने और अपने रब की तरफ लौटने और रुजू करने का काम करना है, उन्हें इन तमाम राहों से और इन तमाम मराहिल से गुजरना है। मदनी दौर के अंदर जो गजवात पेश आए, जो मुख्तलिफ मराहिल और हालात पेश आए, गजवे बदर के हवाले से बस एक बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ कि वो भी हमा जहत उनवान है, उसके अंदर कोई एक पहलू नहीं, हमा पहलू उसके अंदर असबाक हैं कि जिससे इंसानों को सबक लेना चाहिए कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में पहुँचे हैं और सहाबा कराम को आराम करने का आपने हुक्म दिया है और लोग आराम के लिए लेट गए हैं, खुद आप मुसल्ले के ऊपर जाकर खड़े हो गए, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सवा मुश्किल है, खुद आप मुसल्ले के ऊपर जाकर खड़े हुए हैं और वही अपने रब से नामा पयामा और हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़यात में आता है कि आपके हमरा आपके साथ खड़े हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी रिपोर्ट कारकर्दगी की भी पेश कर रहे हैं और जो तवक्कुआत और उम्मीदें लेकर आए हैं उनका भी तस्करा फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि परवरदिगार, ये 313 हैं, जिंदगी भर की कमाई और पूंजी है, वो जो 13 साल मक्के मुअज़्ज़मा में गुजारे, वो जो 2.5 साल मदीने तय्यबा में गुजारे, ये 15 साल का सरमाया है, ये कुल 313, इनके जिस्म पर चीथड़े लगे हैं ये 313 हैं, इनके पेट पर पत्थर बंधे हैं ये 313 हैं, इनके पैर जूतियों से खाली और बिल्कुल नंगे हैं ये 313 हैं, ये कई कई वक्त के फाके से ये 313 हैं जो तेरे दरबार में लेकर मैं आया हूँ, बस चंद ऊंट और चंद घोड़े हैं, चंद टूटी तलवारें, कुल कायनात असलहा और साजो सामान की बस ये है, ये कुल 313 हैं जो तेरे दरबार में लेकर आया हूँ। और फिर यहाँ तक भी आप फरमाते हैं कि परवरदिगार, अगर कल की सुबह ये 313 कामयाब ना हो सके तो फिर क़्यामत तक तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। बज़ाहिर बहुत बड़ी बात है जो आपकी ज़बान मुबारक से निकली है, लेकिन ये बड़ी बात आप ही कह सकते थे जिसने 13 साल मार खाई हो, गालियाँ सुनी हो, कांटों पर चला हो, पत्थरों को सहा हो, भूख बहुत करीब से उस भूख के मंजर को देखा हो, अपनों के दरमियान जो अजनबी ठहरा हो, जिसे सादिक और अमीन लोग मानते थे उसे मक्के से देश निकाला मिला हो, वही ये कह सकता था कि परवरदिगार ये 313 कुल जमा पूंजी और कमाई है, सारी इकट यही है जो कुछ लेकर आया हूँ, इनकी कामयाबी मुस्तकबिल की नवीद और अच्छी कामयाबी शुमार होगी। वाकयात में आता है कि बार बार आपकी चादर आपके कंधे पर से गिर जाती है और बार बार जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी चादर को आपके कंधे पर दोबारा रखते हैं कि आप बार बार ये इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार ये 313 बज़ाहिर तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, बज़ाहिर मादी पैमानों पर तो बिल्कुल ही पूरे नहीं उतरते हैं, लेकिन जज्बे जिहाद से सरशार आए हैं, شوق شہادت کی تمنا لیے آئے ہیں, تجھ سے ملنے کی بےقراری اور اس کا ایمان اور اس حوالے سے اپنی پہچان لے کر آئے ہیں, تجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیرے دشمنوں اور تیرے انکار کرنے والوں سے لڑنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں, اور انہی جذبوں سے سیراب اور سرشار ہو کر یہ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو تاریخ میں کبھی کبھی یہ انجام دیا گیا ہے. اس لیے اس پوری داستان کو بھی آپ وہاں پر بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس مناجات کے ذریعے جہاں تعلق باللہ کی بات کر رہے ہیں, وہاں اپنے تمام صف شکنوں اور سرفروشوں ان کی رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے گویا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میدان بدر کو گرم کرنے میں جو مجھ سے بن پڑا وہ میں نے کر لیا, جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا. کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے, اسی کا وہ مکلف ہے کہ اپنی سے صحیح اور جدوجہد کرے اور پھر کامیابی سے ہمکنار کرنا, نتائج پیدا کرنا, یہ تو بندوں کا نہیں بندوں کے رب کا کام ہے. اس لیے اس کو اسی جانب متوجہ کر کر گویا اپنی ہی بات اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. غزوہ بدر کے اس موقع پر, یہ تو طویل ایک داستان ہے, خود ایک موضوع ہے مکمل کہ جس پر بات آدمی کرے تو کرتا چلا جائے اور بولے تو بولتا چلا جائے اور سنے تو سنتا چلا جائے, لیکن اس کے ذیلی عنوانات بھی بہت سارے ہیں. غزوہ بدر کے اس موقع پر جو جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں وہ جو آخر میں بالکل ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ لوگ مشورہ دیں کہ ان مشرکین مکہ کے ساتھ, ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, رائے کی بات کر رہا ہوں کہ مشورہ لوگوں نے مختلف دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود اپنے رشتہ دار کا سر قلم کرے اور رہتی دنیا تک اس بات کو رقم کرے کہ نسل کی اور رنگ کی اور زبان کی اور خاندان کی ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, رشتہ اگر کوئی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کہ جو مکے والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, انہیں جب ایک صحابی نے پکڑ لیا اور اس کو باندھ رہے تھے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تو چلائے پکارے اور چیخ کر کہا کہ اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ باندھنا, اس لیے کہ اس کی ماں بڑی رئیس ہے, بہت پیسے والی دولت مند ہے, اس کے سلے میں بہت پیسہ دے گی. بھائی وہاں سے چلا کر بولے کہ مصعب تم بھائی ہو کر ایسی بات کرتے ہو, یعنی کس عنوان کو تم لوگوں کے درمیان عام کرتے ہو؟ تو چلا کر کہا کہ نہیں, اس وقت تو نہیں بلکہ جو تجھے باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی. یعنی غزوہ بدر میں جزیات کے اندر بھی اگر آپ جائیں اور چھوٹے چھوٹے جو واقعات بظاہر جن کو ہم چھوٹا کہتے ہیں جو پیش آئیں ان کے اندر اگر جائیں, ان میں بھی بڑا سبق نظر آتا ہے کہ اسلام میں نسل کی اور رنگ کی اور خونی رشتے کی اور علاقائی اور لسانی ان بیعدتوں کو اس نے تسلیم تو کیا ہے, لیکن قرآن پاک میں بھی لتعارفو کہا گیا ہے, لتحاربو تو نہیں کہا گیا ہے کہ اس بنیاد پر لڑنا چاہیے کہ تمہاری زبان الگ ہے میری الگ ہے, تمہاری نسل جدا ہے میری جدا ہے, علاقے الگ الگ ہونے کی وجہ سے لوگ حرب و ضرب کی طرف چل پڑے. یہ پوری تعلیم بھی اس پورے اس کے اندر ملتی ہے. اس لیے میرے دوستو میں نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی, ابھی وہیں پر کھڑا ہوا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا, دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان کے مقابلے میں, نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اسی کے غلبے کے لیے, اسی کے تمکن کے لیے, اسی کے اقتدار کے لیے, اسی کو تمام دائروں کے اندر چلتا پھرتا ایک نمونہ بنانے کے لیے کوشاں ہوں, جدوجہد کریں, خواہ کسی کو برا لگے یا بھلا لگے, ناگوار گزرے یا گوارا ہو, کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے, ہر ہر عنوان. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ جدوجہد اور آپ کے رفقائے کار اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے ان سب کی جدوجہد اسی ایک سمت میں چلنے کی ہے, باقی تمام چیزیں اس کے لیے ممید و معاون ہیں. دعوت و تبلیغ بھی معاون ہے, سیرت سازی بھی معاون ہے, تزکیہ نفس بھی معاون ہے, دنیا سے کاٹنا اور آخرت سے جوڑنا یہ بھی اس کے لیے معاون ہے. ان تمام چیزوں سے معاونت حاصل کرتے ہوئے آپ نے وہ گروہ تیار کیا, وہ افراد پیدا کیے اور اس جد و جہد میں ان کو مصروف کیا اور اس کشمکش میں بالآخر ان کو لا ڈالا کہ جس کے نتیجے میں غلبہ دین اور اسلامی انقلاب واقع ہوا. اس لیے وہ یعنی میں اور آپ جنہیں اسلامی انقلاب سے سروکار ہے اور اسلامی نظام اور شریعت کا نفاذ جن کی ترجیحات میں سے ترجیح اول ہے, انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ انہی تمام راہوں پر چلنا, انہی تمام نشانات منزل کو دیکھنا, تب کہیں جا کر اس منزل تک پہنچنا ممکن ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی وعدہ ہے کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہیں وہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا چلیے شعر بھی سنا دیتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے, کوئی تبصرہ ہی ہے حالات پر. اچھا حضرات تبصرے پہ تبصرہ کہاں کیا جا سکتا ہے, وہ تو خود ایک تبصرہ. السلام علیکم.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی